आज हम बात करेंगे 3 नंबर श्लोक से। महाम भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसंत सहज बल भद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन भद्र
महान समुद्र के तट पर जो नीलाचल पर्वत जो स्वर्णिम है और चमकता है उसके ऊपर स्थित महान एक बड़े भगवान जगन्नाथ अपने शक्तिशाली भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा जो दोनों के बीच में है उनके साथ निवास करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी जो भक्ति सेवा का अवसर सभी
सुर, the word given here is सुर, मतलब देवगण या पुण्यशाली जनों, दैवी प्रकृति संपन्न जनों, actually it says here सुर, सुर, which literally means the devas.
भक्ति सेवा का अवसर देवताओं को प्रदान करते हैं वे मेरे दर्शन के विषय हों।
Here the word sahaja is not translated, but vasanprasadanta sahaja balabhadrena balena, probably because they didn't know how to translate it in this context.
Sahaja.
Oh, I see. Yeah. It's not... Yeah. Sahaja means like a twin in this case. तो महाबोधे अंबोधि का मतलब पानी जाओ, महा अंबोधे मतलब सागर, उस सागर जो पुरी में है वो क्या बात है, उसका विशेष नाम है, उस सागर जो पुरी धाम पर है क्या बात है, कोई है और या? यहाँ पर कोई है उड़ीसा के है समुद्र क्या कौन बोल रहे महोदधि महोदधि आपको नहीं मालूम थोड़ी नहीं वो महोदधि लोग वो महातीर्थ है, समुद्र ही महातीर्थ है। एक कारण है कि वो सब महान पुण्य नदियां उनका पुण्य जल महास वो सब सागर में देते हैं, तो महोदधि महोदधि तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, नील शिखर, शिखर इस प्रसंग में शिखर का मतलब पहाड़, पूरी धाम का एक और नाम है नीलाचल या नीलाद्रि, क्योंकि जगन्नाथ का मंदिर एक पहाड़ के ऊपर है, वो पहाड़ नीलाद्रि को और ऐसे भगवान जगन्नाथ के कुछ नाम है ऐसे नीलाद्रिपति नीलाद्रिनाथ नीलाचलपति इत्यादि। तो इस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि वो खाने का रुचि रे, रुचि मतलब सुंदर हसी लगाओ खनक 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 जैसे शायद क्या है उस समय में वास्तव सोना मिल जाता था या ये केवल अलंकृत भाषा है मुझे मालूम है। शायद आध्यात्मिक दृष्टि में वो नीलाद्री जो खनक में है अर्थात उसमें सोना है तो वो नीलाद्री वो पहाड़ के ऊपर भगवान जगन्नाथ उनके शक्तिशाली भाई बालभद्र के साथ रहते हैं एक प्रासाद में। प्रासाद का मतलब राजमहल, वो राजमहल है भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो आज तक विराजमान है। बालभद्र बालिना बालाराम, बाल का मतलब बल शक्ति, तो कृष्ण बलवान है नहीं, कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान है। तो बालाराम, बालाराम का विशेष बल है। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण से भी बलराम और भी शक्तिमान है, उनका नाम है ऐसे बलराम। और बालभद्र चूंकि बालभद्र बलराम बालदेव भगवान कृष्ण के बड़े भाई है, इसलिए यशोदा माई बलराम को विशेष कर्तव्य दिया कन्हैया की रक्षा करने। तो काना कन्हैया ब्रजधाम में कृष्ण गोपाल को कन्हैया बोलते। तो छोटे सा बालक होने भी पर कृष्ण की बड़ी इच्छा थी बड़े बड़ी गायन को ब्रज के सब वनों में लेके गोचारण करना। बहुत छोटा वयस में कृष्ण और उनके सब दोस्तों छोटे छोटे बछड़ों को चारण किए थे, लेकिन और थोड़ा बड़ा होने के पर भगवान कृष्ण नंद महाराज को उनकी इच्छा प्रकट की कि मैं अभी बड़ा हूं तो मुझे यही सेवा दो, ये बड़े गायन की चारण करना। तो बच रहे थे गांव नंद गांव के पास में उनका घास खिलाना है और ज्यादा दूर नहीं जाना, लेकिन गायन तो और बहुत दूर लेके जाना है। यशोदा माई अस्वीकार किया, कृष्ण बहुत छोटा है और बहुत दूर लगा, मेरा कृष्ण समर्थ नहीं है बड़ा काम करने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण जबरदस्त है, नहीं नहीं मैं कर सकता हूं। तो इतना सा इंसिस्ट किया था, क्या बोलते इंसिस्ट, हट किए थे कि नंद महाराज इनका वो भक्त है, इसलिए उनका हृदय बहुत नरम है और इसलिए तो भगवान कृष्ण बाप बाप हट करके या हट के तो फिर नंद महाराज स्वीकार किया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यशोदा माई बालभद्र को विशेष कर्तव्य दिया कि तुम बड़ो हो, तुम बलराम हो, बलवान हो, तो तुम विशेष नजर रखो मेरे खनाया को, जिससे उसका कोई विपद विपत्ति नहीं हो। बलराम तो माँ यशोदा का विश्वास था कि उनका खनाया अगर कोई भी विपत्ति में पड़ेगा तो बालभद्र है कृष्ण की रक्षा करने के लिए। तो माँ यशोदा अनुमति दी कृष्ण को गोचारण करने के लिए, एक शर्त था कि बलराम साथ में जाएगा फिर मैं अनुमति दूंगा, यही शर्त है। तो ईश्वर परम कृष्ण कौन है? परमेश्वर कृष्ण या बलराम, दोनों एक ही भगवान है दो रूप में। तो बलराम बड़ा भाई है और विशेष बलराम है, परंतु अंतिम विचार में वो कृष्ण जो बलराम से इतना सा बलवान नहीं है ऐसे लगते है, लेकिन अंतिम विचार है कि बलराम से कृष्ण और बलवान है। और क्या प्रमाण है आप सब जानते हैं, वो कृष्ण एक बार श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, कृष्ण बलराम मंदिर में थे, तो कृष्ण और बलराम के सामने खड़े रहे थे और उनके उपस्थित शिष्यों से पूछे कि कौन सबसे बलराम है, कृष्ण या बलराम? और कोई कोई बोले कृष्ण, बलराम। और उनके शिष्यों का मीमांसा कि बलराम सबसे बलवान है, और प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्ण सबसे बलवान है। और ये प्रमाण है कि देखो कृष्ण बलराम, तो बलराम का हाथ कृष्ण का गर्दन पर है, मतलब भगवान कृष्ण बलराम का क्या बोलते हैं, शरीर का वजन सबका भार क्या बोलते हैं, समर्थन कहते बहन कहते। तो यही प्रमाण है कि बलराम थक गया है, वो बलराम थक गया है और कृष्ण बलराम का शरीर का बल वहन करते। तो यही प्रमाण आचार्य का प्रमाण है, आचार्य आचार्य जय मत से मत शाह। तो और कौन है कृष्ण और बलराम के साथ पूरी धाम का सुरम्य सुबृहत जगन्नाथ मंदिर में सुभद्रा मध्यस्थ? तो उनके बीच में सुभद्रा भी है। मैं जब सर्वप्रथम जगन्नाथ सुभद्रा बलराम का दर्शन किया, सोच की और बीच में वो जो है वो कृष्ण है, क्योंकि बीच में है तो वो ही कृष्ण हो, तो कोई मुझे नहीं बोला, तो बोला कि ये जगन्नाथ सुभद्रा बलराम है। सोच की बीच वाली जो एक्चुअली सुभद्रा माई है वो कृष्ण है, ऐसा मेरा विचार था। तो मध्यस्था सुभद्रा देवी और ये सब विशेषकर भगवान जगन्नाथ सकल सुर सेवा अवसर देते हैं। सब देवगण सुर सुर ये शब्द का विशेष अर्थ है जो अधिकारी है सूर्यपान का। सूर है एक प्रकार का स्वर्ग मध्य स्वर्ग का शराब है। तो जो पीने वाला है वो सूर्य देवत स्वर्ग के देवता। तो वे भगवान की सेवा करते हैं अप्रकट रूप में। वे पूरी धाम में भगवान जहां जहां आचा विग्रह के रूप में स्थापित है और उनकी सेवा हो रहे हैं वहां वहां सब देवागण भी आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। जैसे बद्रीनाथ में तो 6 महीना भूदेवगण अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा बद्रीनाथ की सेवा होती है और शीतकाल में वो हिमालय पर्वत पर है बहुत बहुत ठंड पड़ते हैं वहां पर। तो शीत बहुत शीत में बहुत ठंड में वो ब्राह्मणों वहां से और थोड़े नीचे आते हैं और शीतकाल देव प्रयाग उसका उन्हें रहते हैं क्योंकि बद्रीनाथ उस समय तो पूरा हिम से आवृत है और वहां रहना संभव नहीं है साधारण मनुष्यों के लिए। एक दो संत वहां रहते जो तीव्र शीत सहन कर सकते और आज कुछ सालों के पहले वो भारतीय फूल्स एक कैंप बना है वहां पर तो कुछ सैनिक भी वहां रहते तीव्र शीत में। तो क्या है वो देव प्रयाग जाने के पहले वो ब्राह्मणों जो 6 महीना भगवान बद्रीनाथ की सेवा करते हैं तो जाने वो मंदिर के द्वारों बंद करने के पहले अंदर एक दीप जलाते और 6 महीना के पश्चात वापस आते और दीप जलते हैं। तो कैसे कहा से तेल आते हैं और वो चूल्हा आते हैं तो यही प्रमाण है कि जब मनुष्य या भूदेवगण ब्राह्मणों नीचे जाते हैं उस समय देवगण आते हैं बद्रीनाथ भगवान की सेवा करने। तो ऐसा चमत्कार होते आज तक भारत में हमारे यह चमत्कार है क्योंकि हम साधारण मनुष्य लेकिन जहां जहां भगवान की सेवा होती है वहां वहां देवगण भी आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। पूरी धाम में चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में जब चैतन्य महाप्रभु वहां थे 24 साल चैतन्य महाप्रभु 26 सालों ने पूरी धाम में अवस्थान किया। एक्चुअली 18 साल और क्योंकि उसमें 6 साल का गमन आगमन था पूरी धाम से आना जाना था। तो उस समय बहुत यात्री आए थे भारत के विभिन्न विभिन्न देशों प्रांतों से आए थे जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन और नृत्य में अंश ग्रहण करने के लिए। तो उस समय बहुत स्वार्थ देवगण भी आए थे, यात्री गण जैसे, मतलब छद्मवेश जैसे साधारण मनुष्य आए थे, महान महान देवगण आए थे। और भक्ति विनोद ठाकुर उनकी दृष्टि में ब्रह्मा आदि देवगण चैतन्य महाप्रभु की आरती करते हैं। एक घटना थी न्यूयॉर्क में, तो श्रील प्रभुपाद के नवीन शिष्यों उस समय सब नवीन थे, तो श्रील प्रभुपाद के लिए एक प्रवचन का कार्यक्रम व्यवस्था थी, एक विशाल हॉल में। तो विशाल विशाल हॉल था और 500-600 सीट था, लेकिन खाली 5-6 लोग आए थे प्रभुपाद का प्रवचन श्रवण करने के लिए। तो फिर भी प्रभुपाद तो पूरा लंबा प्रवचन दिए थे, हरी कथा। और बाद में प्रभुपाद के शिष्यों प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद हमें बहुत खेद है कि बहुत कम लोग आए थे। और प्रभुपाद बोले कि कम लोग तुम लोग नहीं देखा, प्रमाद उपस्थित था, शिव उपस्थित, सब देवगण उपस्थित थे। जब एक शुद्ध कृष्ण भक्त हरि कथा बोलते तब सब देवगण आते हैं श्रवण करने के लिए। तो मंदिर स्थापन करना क्या है, एक अवसर, अवसर किस लिए मंदिर स्थापन करना है? तो पुण्यशाली लोगों को अवसर देना, भगवान का दर्शन करना, सेवन करना, नाम कीर्तन करना, और देवगण भी आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो जगन्नाथ स्वामी जो नीलाद्रि के ऊपर उनका सुंदर मंदिर में निवास करते हैं, उनके बड़े भाई बलराम और सुभद्र के साथ रहते हैं, वे वैसे निवास करने से सब देवगण को अवसर देते हैं उनकी सेवा करने के लिए। और एक मंतव्य है कि सब जो भगवान जगन्नाथ के भक्त है सब देव है, विष्णु भक्त स्मृत दायवा। और विशेषकर पुराण शास्त्र का वर्णन है कि पूरी निवासियों सब चतुर्भुजी है, हम नहीं देखते, द्विभुज देखते, अर्थात वे सब वैकुंठवासी है, पूरी धाम वैकुंठ के समान। तो आज तक इस दूषित आधुनिक जमाने में भी तो सब पूरी निवासियों की विशेष प्रीति है भगवान जगन्नाथ, पूरा विश्वास भगवान जगन्नाथ। केवल पूरी में नहीं, पूरा ओडिशा में, गंजम डिस्ट्रिक्ट शायद थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पर लोग की विशेष श्रद्धा है नृसिंह भगवान, वो वहां से ज्यादा दूर नहीं सिंहाचल जो आंध्र प्रदेश में, वहां पर लक्ष्मी बरा नरसिंह मंदिर, और गंजम के लोग खस वहां जाते यात्रा के लिए। उनकी पूरा उड़ीसा में नृसिंह के प्रति भी विश्वास है लोग। 3-4 साल के पहले 2 महीना रहा था एक ब्राह्मण का घर में पूरी धाम में, और उस घर में जो लगभग लगभग सभी समय जो करंट नहीं आती, तो ऐसा बाती प्रदीप से प्रदीप जला के शाम को सब नृसिंह पड़ा की प्रार्थना हर रोज उनका अभ्यास कर, तो सब पूरी निवासियों की श्रद्धा है और ओरियलों की श्रद्धा है भगवान जगन्नाथ। ये जानते हैं कि ये राधा गोविंद वही कृष्ण है, फिर भी इस रूप पर उनकी श्रद्धा है। और ये बड़ा विचित्र है कि शंकराचार्य का विशेष प्रभाव आज तक पूरी धाम में है। वो सब सेवा का नियम जो आज तक चल रहा है वो शंकराचार्य ने स्थापना की, तो सब पूरी निवासियों विशेषकर फंड अर्थात ब्राह्मणों की प्रीति है जगन्नाथ के लिए। वो अभिषेक रथ यात्रा का खास रथ यात्रा का समय है, वो सब दायित्व वही फंड नहीं है, वो अलग जाती है। पूरी की संस्कृति बहुत गहरी है, तो वे जगन्नाथ उनके कुटुम्ब जैसे मानते, और इसलिए वो प्रेम से जगन्नाथ को निंदा करते। अश्लील बातों से जगन्नाथ की निंदा करते, जगन्नाथ को कालिया बोलते, तुम कालो और अनन्य अनन्य शब्दों से। तो चतुर्थ श्लोक, कृपा परापार सजल जलदत् श्रेणी रुचिर रवाणी राम स्फुरद अमर पंके लोह मुख सुरेन्द्राय आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन भक्त गामी भगत मे।
भगवान जगन्नाथ कृपा के सागर है और जल से भरे काले बादलों की भक्ति के समान सुंदर है। वे लक्ष्मी और सरस्वती के आनंद के स्रोत हैं और उनका मुखमंडल एक खिले हुए निर्मल कमल के समान है। देवताओं में श्रेष्ठ देवताओं और ऋषियों में श्रेष्ठ गण उनकी उपासना करते हैं और उपनिषद उनका यशनाम करते हैं। वह जगन्नाथ स्वामी मेरे नेत्रों के विषय है।
भगवान जगन्नाथ दया सागर है, तो ये वर्णन हम बार बार मिलते हैं भगवान का वर्णन में। तो दूसरे श्लोक में भगवान का रूप वर्णन था, तो नाम रूप गुण लीला, तो भगवान के असंख्य गुण है जिसमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण? भक्तवात्सल्य, उनकी कृपा उनके भक्तों के प्रति। तो सब ऐसी स्तुति में और कीर्तन में भक्त भक्तजनों से रचित कीर्तन और ऐसी स्तुतियों में कि भगवान दयामय है, तो यही वर्णन है। क्योंकि भक्ति ऐसी है कि भक्तों ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत पतित हूं और भगवान इतने महान 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 होने के पर तो वही भक्त वत्सल है और नहीं इतना सा पतित इतना सा तुच्छ होने पर भी भगवान दयालु है। मेरी एक ही आशा है कि भगवान मुझको उद्धार करेंगे क्योंकि वे दया सिंधु वो सब अगला श्लोक में आएगा। दया सिंधु भगवान कृपा सिंधु कृपा सागर कृपाम्बुधि कृपा के लिए एक ही शब्द है संस्कृत में और शब्द और सागर के लिए एक ही शब्द है। तो ऐसे दया सागर दया सिंधु करुणा निधि तो ये सब नहीं निधि निधि भी सागर। तो ऐसे बहुत शब्दों से कि भगवान जगन्नाथ दया सागर है वो वर्णन है। अमित पति पति पावन तुम्हारा पवित्र नाम भक्ति विनोद ठाकुर कहते मैं पतित हूं और तुम भगवान कृष्ण पतित पावन ये आपका प्रसिद्ध नाम है तो मुझको उद्धार करो पावन करो। नरोत्तम दास कही कीर्तन में ऐसा कहते हैं जैसे बहुत आज सुबह गए थे नरहरि गुरु गए थे उसके पहले क्या आते हैं पतित पावन हेतु तब अब था मौसम पतित प्रभु न पाए। तो भगवान ऊपर से आते हैं हमको ऊपर ले जाने के लिए तो मैं पतित हूं। ये तो अगर हम सोचते हैं मैं ऊपर हूं तो भगवान हमको नहीं उठाएंगे तो कि मैं पतित हूं इस प्रकार सोचने चाहिए। दायिन्य भाव से भगवान भक्तों क्या बोलते हैं भगवान आकर्षित होते हैं भक्तों का दायिन्य भाव से। कृष्णा ये नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण देते हैं उनके असंख्य दिव्य गुणों से रूप नाम गुण रूप लीला सब कुछ जो भगवान की है तो सब आकर्षण देते हैं। और भगवान स्वयं आकर्षित होते हैं उनके भक्तों का दायिन्य भाव से। तो कृपा सिंधु भगवान उनका गुण है और उनका रूप कितना सुंदर है सजल जलदय श्रेणी रुचि। तो ऐसे भी भगवान श्याम सुंदर तो कि वे नवमेघ श्याम वो एक नाम है भगवान कृष्ण का। जलदा का मतलब बादल। तो ऐसे इस मौसम में हम सजल जलदा देखने से भगवान का रूप का स्मरण कर सकते। तो ऐसा है कि सजाओ जलद अर्थात शाम में या काल बादल देखने से सब मोर मयूर बहुत उत्साहित होते और विशेष नाचते हैं। तो उसका कारण क्या है उसका कारण है कि भगवान कृष्ण का स्मरण करते शाम में देखने से। रमा, रमा कौन है? रमा कौन? लक्ष्मी। वाणी, वाणी सरस्वती। तो लक्ष्मी जी है धनैश्वर्य की अधिष्ठात्री और सरस्वती है विद्या देवी। तो सब ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और विद्या भगवान कृष्ण के स्वाभाविक गुणों में, और लक्ष्मी और सरस्वती ये ऐश्वर्य और विद्या की देवता की देवियां हैं, और वे भगवान जगन्नाथ से, भगवान जगन्नाथ की सेवा करने से, उनका रूप देखने से, भगवान जगन्नाथ से पूर्ण आनंद मिलते हैं। तो धन ऐश्वर्य संपत्ति या विद्या, तो ये सब महान गुण जो किसी को कुछ भी आध्यात्मिक कुछ भी आनंद नहीं दे सकते, यदि वो विद्या और धन कृष्ण भक्ति का फल नहीं है। भौतिक विद्या, धन, संपत्ति तो हमको कुछ भी आनंद नहीं दे सकते। वो अगर धन संपत्ति है और वो भगवान की सेवा में लगाना है तो उससे आनंद होते, और विद्या अगर हो तो वो यदि कृष्ण की सेवा में अर्पित नहीं हो, यदि ज्ञान अर्जन करना है लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है कि यही ज्ञान भगवान की सेवा में लगाना, वो उद्देश्य में अगर नहीं हो तो वो धन संपत्ति और विद्या किसी को कुछ भी आनंद नहीं दे सकते, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती स्वयं उनका ऐश्वर्य और विद्या से आनंद नहीं लेते हैं, भगवान जगन्नाथ से आनंद लेते हैं। तो भगवान कृष्ण का रूप सजाला जाला जलदा श्रेणी अर्थात जल से भरा बादलों की पंक्ति जैसे सुंदर है, और विशेषकर उनका मुखमंडल एक निर्मल पूरा विकसित कमल जैसे है। वे सभी महान देवगणों से आराध्य है। तो यही भगवान जगन्नाथ का रूप वर्णन, गुण वर्णन और लीला वर्णन अगला श्लोक में होगा, और कल सुबह हम और बाकी चार श्लोकों का वर्णन करेंगे। कल सुबह आशा है बहुत लोग आएंगे, सुबह का समय क्लास के लिए, और हम और भी जगन्नाथ देव की स्तुति करेंगे। इस प्रकार जय जगन्नाथ स्वामी की जय, हरे कृष्ण।
महाराज की
तथ्य कहो because it's funny. Hare Krishna.